देवला पुस्तक 11वीं लेक्चर नंबर 17 ओम नमः सिद्धेभ्य ओम नमः सिद्धेभ्य ओम नमः सिद्धेभ्य ओम शुद्धात्मने नमः नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहूणं कम्मठजनियवेयण वहि समुत्तिर्णये जिनेण मिहुं वेयण महाहि आरं विविहि आरं परु हेमुं। आचार्य श्री वीरसेन स्वामी रचित यह धौला नामक टीका है जो षटखंडागम ग्रंथ पर लिखी हुई है, जिसके कर्ता है पुष्पदंत और भूतबलि आचार्य। इसमें जो चौथा खंड, इसका नाम है वेदना, और अभी हम वेदना काल विधान अनुयोग द्वार देख रहे हैं। ग्यारहवीं पुस्तक के पृष्ठ संख्या 130 पर हम आ गए हैं। देखो, यहाँ हम ज्ञानावरण के उत्कृष्ट अनुत्कृष्ट के जो काल की हमने बात देखी थी, उसके बाद जघन्य और अजघन्य की बात चल रही थी। जघन्य में हम क्या देख रहे थे? जघन्य वेदना को काल की अपेक्षा जघन्य तो कहते क्षीण कषाय के अंतिम समय में, वहाँ एक समय बाकी है। उल्टे क्रम से अजघन्य देखते दो समय, तीन समय, चार समय से हम कहाँ तक आए थे? अंतर्मुत, वो जो जिसको कृतकृत्य छद्मस्थ वाला काल कहते, उसके पहले समय में क्या हुआ था? अंतिम कांडक, स्थिति कांडक के अंतिम फाली के लिए, तो वहाँ हाँ सत्य मधे बंध या सत्व की अपेक्षा जघन्य और अजघन्य देख रहे हैं। हाँ, परंतु यहाँ बंध की अपेक्षा नहीं लेना है, क्योंकि यहाँ सत्य ही है, यहाँ तो बंध है ही नहीं बारहवें गुण स्थान में, और उसके पहले भी जब बंध कहेंगे तो सत्ता से कम ही होता है। तो सत्ता से तो कम बंध होता है, तब तो हम बंध की बात नहीं ले सकते, सत्व की ले सकते। और जहाँ सत्व से बंध अधिक हो सकता है, नवे क्या कोई भी समय दृष्टि, सत्ता से बंध ज्यादा होता ही नहीं है कोई भी समय दृष्टि, तो जो बंध की अपेक्षा कहेंगे सत्ता से जब बंध अधिक होगा, वो तो हम एक इंद्रिय में देने वाले बाद में। तो हमने देखा था कि अंतिम कांडक जब अंतिम फाली फिरती है तो अनेक अंतर्मूर्त प्रमाण निषेकों का एट ए टाइम घात हो जाता है, तो उतने सत्ता वाले कोई भी जीव कहीं नहीं होंगे। तो कहते पहले तो अंतर्मूर्त तक तो निरंतर स्थान, फिर अंतर पड़ा, फिर निरंतर, फिर अंतर, फिर निरंतर, इस तरह से चलेगा। पेज नंबर 130। तो ऐसे होते होते कहाँ तक नीचे आना है? तो अनिवृत्तिकरण तक। तो अनिवृत्तिकरण तक इसलिए लाना है नीचे, उसके पहले भी नीचे ला सकते, परंतु वहाँ शांतर निरंतर हो गए स्थान, हमको अभी निरंतर स्थान चाहिए, इसलिए अनिवृत्तिकरण में वहां तक लाना, एक इंद्रिय के बंध के समान सत्व हो जाए तब तक तो नीचे लाना उल्टे क्रम से। अब वो जीव लेना कौन से? एक इंद्रिय के जो सत्व है मिनिमम, हाँ, वहां से, और उसे बंध अधिक करते हुए जीव को पीछे पीछे ले लेना। यानी बंध की अपेक्षा से हम उल्टे क्रम से जाएंगे एक एक समय के डिफरेंस से, तो उसको कहते हैं एक इंद्रिय की ध्रुव स्थिति। एक इंद्रिय की ध्रुव स्थिति तक हम पीछे गए थे। देखो ये नीचे यहाँ पढ़ना, देखो इन्हें वो कौन सी बढ़ोतरी होती है? तो कहते आपको जब चाहिए तभी हम पढ़ेंगे। हाँ, तो पेज नंबर 120 पर हम गए थे, पेज नंबर 121 पर देखो, यहाँ बीच वाला जो एक बड़ा पैराग्राफ है ना, वहाँ उसके नीचे तीसरी लाइन देखो, इस प्रकार अनिवृत्तिकरण काल के संख्यात वे भाग तक उतारना चाहिए। वो असंख्यात का हमने संख्यात किया था। वहां के अनिवृत्तिकरण के स्थिति सत्व से, वहां सत्व लिया उसका, बादर एक पर्याप्त जीव के ज्ञानावरण का जघन्य स्थिति सत्व पल्लोपम के असंख्यात वे भाग से विशेष अधिक है, ऐसा जीव लिया वहां पर। यानी वो अनिवृत्तिकरण वाला ने उससे भी कम किया था, उससे ये एकेंद्रिय का विशेष अधिक था। अब उस जीव को ले लेना और फिर सारे निरंतर अपुनरुक्त स्थान उत्पन्न करते करते, तो कहते ये एकेंद्रिय की जो बादर एकेंद्रिय की जो ध्रुव स्थिति, ध्रुव स्थिति मिनिमम पॉसिबल जो होती है उसको ध्रुव स्थिति कहते हैं। फिर उसमें अभी ध्रुव स्थिति को लेके एक समय अधिक, दो समय अधिक, तीन समय अधिक, उल्टे क्रम से चल रहे। जब ध्रुव स्थिति डबल हो जाएगी, फिर ध्रुव स्थिति तीन, पहले तो असंख्यात्वा भाग, असंख्यात्वा भाग बढ़ेगा, फिर संख्यात्वा भाग बढ़ेगा, संख्यात गुणा दो गुना हो गए तो संख्यात गुणा बढ़ेगा और फिर असंख्यात गुणा बढ़ेगा। इस तरह से हमने देखा था। तो कहीं कभी बीच में जो बढ़ता है तो इन्हें जगन्य परिता संख्या से भाग दिया तो उसको असंख्यात्वा भाग बढ़ा कहेंगे, और उत्कृष्ट संख्या से भाग दिया तो कहेंगे संख्यात्वा भाग। पर बीच वाले जो है ना वो सारे छेद भागहार हो गए, पहले छेद भागहार, फिर गुणा में छेद गुणहार भी बताएंगे उन्हें। तो ये उसकी हमने चर्चा की थी, छेद भागहार क्या है, छेद गुणहार गुणकार क्या है वगैरह वगैरह। तो उसके बाद हम यहाँ पर आए थे पेज नंबर 129 पर। यानी वो सब छेद गुणकार होते होते बीच में सम गुणकार होता है, फिर छेद गुणकार होता है, इस तरह से सम गुणकार यानी पूर्णांकों में और छेद गुणकार यानी अपूर्णांकों में, इस तरह से आगे बढ़ते हैं। तो कहाँ तक बढ़ाना है, तो कहते कि संगी पंचेंद्रिय की ध्रुव स्थिति तक बढ़ाना है। देखो यहाँ पेज नंबर 130 पर ही आने, अब हम जहां देखने वाले हैं ना, चौथी लाइन 130 पेज पर चौथी लाइन लास्ट में इस प्रकार मिला, पेज नंबर 130 ऊपर से चौथी लाइन अंत में 4×4=16 लिखा है ना, चौगुनी वृद्धि। इस प्रकार छेद गुणकार और सम गुणकार के क्रम से बंधव सत्व का आश्रय करके संगी पंचेंद्रिय जीव की ध्रुव स्थिति तक ले जाना चाहिए। ध्रुव स्थिति यानी मिनिमम स्थिति और उसका बंध भी उतना होता है, उसको ध्रुव स्थिति कहेंगे। उसका प्रमाण संदृष्टि में 28 है, यानी वो ध्रुव स्थिति कितनी है तो 28 है, और वो एकेंद्र की ध्रुव स्थिति हमने कितनी मानी थी, 4 मानी थी, तो ये 7 गुना हुआ ना उसके। फिर इसके ऊपर एक समय की वृद्धि होने पर अन्य अपुनरुक्त स्थान होता है, उसके गुणकार का प्रमाण यह है। यानी 28 के बाद वाला एक समय वृद्धि हुई तो 29 हुआ, तो 4 से कितने गुना हुआ, तो 7 पूर्णांक 1/4 गुना हुआ। कल में आती बात समझ में आई, बात ये समझो तो आगे की बात समझेंगे। देखो पहले में पंचेंद्रिय की ध्रुव स्थिति 28 थी, उसमें एक समय बढ़ा तो 29 हुआ, तो 29 ये 4 से कितने गुना है, तो 29/4 गुना है, 7.1/4 गुना है। तो कहते ये उसके गुणकार का प्रमाण यह है, 7.1/4 यानी 29/4, क्योंकि अभी वो 29 हो गए समय, इससे ध्रुव स्थिति को गुणित करने पर यानी 29/4 × 4 29 आ गए। संगी पंचेंद्रिय जीव की एक समय से अधिक ध्रुव स्थिति का स्थान होता है तो 4×29/29 होते हैं। इस प्रकार छेद गुणकार और सम गुणकार स्वरूप से बादर ध्रुव स्थिति में, यानी वो कैसे होगा, अभी 29/4 हो गए ना उसका गुणकार, फिर 30/4, 31/4, 32/4 यानी 8 गुना हुआ, फिर 33/4, 35, 34, 35, फिर 36 यानी वो तो 9 गुना हुआ। यानी बीच वाले सारे छेद गुणकार कहेंगे और जहाँ पूर्णांक आते थे वहाँ सम गुणकार कहेंगे। इस प्रकार छेद गुणकार और सम गुणकार स्वरूप से बादर ध्रुव स्थिति में एकदम उत्कृष्ट गुणकार शलाकाओं के प्रविष्ट होने तक ले जाना चाहिए। उत्कृष्ट गुणकार जो कोई पॉसिबल है वहां तक ले जाना चाहिए। यह अन्य अपुनरुक्त स्थान होता है 228। 228 यानी वहां का गुणकार कितना होगा? 4। 57 होगा ना गुणकार? 57 होगा, क्योंकि 228 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 4 करेंगे तो 228 आते हैं। तो 228 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू 57। 4 5 24, 4 7 28। ख्याल में आती है बात? यहां तक समझे? अब इसके आगे समझेंगे। इसके ऊपर एक समय अधिक बढ़ करके बंद होने पर अन्य अपुनरुक्त स्थान होता है, इसका छेद गुणकार होता है। ये नेचुरली यानी इसके आगे वाला वो सारे पंचेंद्रिय के हो गए। अभी 28 के ऊपर सारे पंचेंद्रिय उनके हो गए। एक समय नहीं, एक कम उत्कृष्ट। हाँ, एक कम उत्कृष्ट। अभी उत्कृष्ट उत्कृष्ट 58 मानेंगे, वो जो मालूम है ना उनको, यानी बादर एक इंद्रिय की ध्रुव स्थिति और जो अधिक से अधिक कितने गुना हो सकता है वो तो बादर ध्रुव स्थिति, बादर स्थिति क्या, परंतु वो तो बादर एक इंद्रिय की होनी चाहिए, क्योंकि ऊपर वो बादर ऊपर क्या लिखा है, ध्रुव स्थिति इतना ही लिखा है, बादर ध्रुव स्थिति, यानी उसमें भी और बढ़ते चले जाएंगे ना, यानी उनका प्रमाण उन्होंने 58 माना होगा। यहाँ तक तो एक कम उत्कृष्ट गुणकार शलाका, उत्कृष्ट गुणकार शलाका से एक कम वो 57 आया है, यानी उत्कृष्ट गुणकार शलाका 58 होनी चाहिए। अभी हमने पढ़ा नहीं आगे, ये होनी चाहिए। तो कहते यहां तक आ गए हम, 57 तक आ गए, यानी 57 गुणा तक आ गए। वो 57 गुणा करने पर कितना होगा? 228 होता है। हमने पहले क्या माना था? एकेंद्रियों की ध्रुव स्थिति कितनी मानी थी? 4। पंचेंद्रियों की संगी पंचेंद्रियों की ध्रुव स्थिति 28। 228 नहीं, वो ध्रुव स्थिति है। ध्रुव स्थिति के आगे बहुत सारे विकल्प है ना, बंध की अपेक्षा तो कहां तक चले जाएगा, उत्कृष्ट बंध तक चला जाएगा। तो कहते कि वहां तक चले, 57 गुना तक आ गए, उसमें भी और एक समय बढ़ाएंगे तो 228 से 229 हो गए। तो भागहार कितना होगा? 57 पूर्णांक एक चतुर्थांश होगा, जैसे हमने पहले देखा था। यानी 229 बट्टे 4 हो जाएगा। देखो, इसके ऊपर एक समय अधिक बढ़ करके बंद होने पर, बंद की अपेक्षा होते ना, यानी अभी बंद कितने का होगा? 229 का होगा। अन्य अपुनरुक्त स्थान होता है, इसका छेद गुणकार होता है। छेद गुणकार कितना कैसे होगा? 229 डिवाइडेड बाय 4 होगा। हाँ, 57 पूर्णांक एक चतुर्थांश। यथा बादर ध्रुव स्थिति प्रमाण समयों के बढ़ने पर यदि एक गुणकार शलाका प्राप्त होती, यानी जो हमने देखा था कि एक गुणकार शलाका ने दो गुणा हुआ, बादर स्थिति से में बादर स्थिति बढ़ गई, दो गुणा हो गया, एक गुणकार शलाका प्राप्त होती। इस प्रकार फलगुणित इच्छा में प्रमाण राशि का भाग देने पर जो लब्ध हो उसे पूर्व रूपों में मिलाने पर गुणकार होता है। ये 57 पूर्णांक एक चतुर्थांश कैसे आया, समझ में आई बात? पहले 228 था, 229 हो गया, तो 229 बटे 4 करने पर 57 पूर्णांक एक चतुर्थांश होता है। इससे बादर ध्रुव स्थिति को गुणित करने पर सांप्रतिक यानी वर्तमान का स्थान होता है, यानी 229 बटे 4 ये कहां से निकले? तो 57 पूर्णांक एक चतुर्थांश का ही ये रूप है, उसको 4 से गुणा करो, क्योंकि ध्रुव स्थिति से इतना गुणा करने पर वो स्थान 229 का मिलता है। पश्चात दो समय अधिक बढ़कर बंद होने पर अन्य अपुनरुक्त स्थान होता है, यहाँ पूर्वोक्त अंश को दुगुणित करके समस्त रूपों में मिलाना चाहिए। यानी उन्होंने अन्य पद्धति से बताया है कि वो एक एक चतुर्थांश ने एक बढ़ा तो उसको दुगुना करा तो आधा हो गया। इसको पूर्व रूप में मिलाने पर इतना होता है, यानी 57 पूर्णांक एक चतुर्थांश था, उसके बदले 2 चतुर्थांश एक द्वितीयांश हुआ, यानी 57 प्लस एक द्वितीयांश, तो उसको कहेंगे 115/2। दूसरी भाषा में हमको कहना है तो 229 वाला स्थान था, अब 230 का हो जाएगा, यानी 230/4, उसी का अर्थ होता है 115/2। ब्रह्मा पेज नंबर 131 पर है। देखो हमने ध्रुव स्थिति बादर एक इंद्री की 4 मानी थी, बढ़ते 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 संगी पंचेंद्री की ध्रुव स्थिति 28 मानी थी, तो कितने गुना हुआ था? 7 गुना हुआ था। तो 28 का 29 अनेक समय बढ़ने पर कितने गुना होगा? 7 पूर्णांक के चतुर्थांश गुना 29/4। बढ़ते 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 यानी कभी छेद गुणकार कभी ध्रुव यानी सम गुणकार होते होते उन्होंने कहा कि उत्कृष्ट जहां गुणकार होता है तो उन्होंने 58 माना, तो उसमें एक कम, तो 57 गुना तक ले गए। 57 गुना यानी 228 होते हैं, वो 57 गुना हुआ, 229 हो जाएगा तो 57.1/4 इतने गुना हुआ। अभी उसमें और एक दो समय बढ़े तो 57.2/4 एक द्वितीयांश, उसी का अर्थ होता है 230/4 यानी 115/2। तो यहाँ हम पेज नंबर 131 पर छठी लाइन में आ गए। दो समय वृद्धि होने पर 230 वाला स्थान होता है, यहाँ तक समझ में आई? तीन समय अधिक बढ़ने पर आए हुए जीव के अन्य अपुनरुक्त स्थान होता है, वो 231/4 हो जाएगा। पूर्वोक्त अंश को तिगुणा करके उन्होंने उसकी दूसरी पद्धति बनाई है, एक चतुर्थांश एक अंश बढ़ा था ना, उसको तिगुणा करा यानी 3/4, यानी ये कैसा गिनेंगे अभी 57.3/4 पूर्वोक्त गुणकार रूपों के साथ मिलाने पर इतना होता है 57.3/4। इससे बादर ध्रुव स्थिति को गुणित करने पर क्या हुआ? क्या छपा है? 3/4 करना। देखो नई पुस्तक में कुछ गलती है, आपके पास कौन सी है? पुरानी है सब, लक्ष्मी के पास नई है। हाँ, इससे बादर ध्रुव स्थिति को गुणित करने पर इच्छित वृद्धि स्थान होता है, यानी 231/4 को 4 से गुणा करेंगे तो 231 आते हैं। हमने डायरेक्ट 231 को 4 से भाग दिया था। इस प्रकार पूर्वोक्त अंश का गुणकार एक कम ध्रुव स्थिति के होने तक छेद गुणकार होकर जाता है, तो वो 58 उनका तो उत्कृष्ट गुणकार है, उसमें एक समय कम तक चला जाता है, पश्चात एक समय अधिक बढ़कर बंद होने पर सम गुणकार होता है, यानी पूर्णांकों में उसका प्रमाण 58 है। देखो ये 58 बताया ना, ये तो हमने अनुमान से पहले नक्की किया था, क्योंकि पेज 130 पर जो पहले पैराग्राफ के लास्ट में उन्होंने बताया था एक कम उत्कृष्ट गुणकार शलाका यानी 57 ली थी, और 4 को 57 गुणा करने पर 228 आए थे। उसके बाद एक एक समय से बढ़ते हुए गुणकार कैसे छेद गुणकार होता है वो भी बताया। अब अंतिम जो गुणकार है 58 वहां तक पहुंच गए। नई पुस्तक में करेक्शन कर दिया। कौन से पेज कहाँ पर है अश्विन भाई? नीचे से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 नंबर पर, नीचे से 7। 57.3/4 हमारे में 7 नंबर की लाइन है, आप में यहाँ लिखा है ना गुणकार रूपों के साथ मिलाने पर इतना होता है, वो 3/4 होना चाहिए। मनीषा बेन करेक्शन कर लो। हाँ 3/4। अब हम नीचे से चौथी लाइन में आए, यानी वो 58 उसका है, उत्कृष्ट गुणकार कितना है? गुणकार शाला का 58 है। इससे बादर ध्रुव स्थिति को गुणित करने पर, बादर ध्रुव स्थिति 4 थी, संख्यात गुण वृद्धि का अंतिम स्थान होता है, ये संख्यात का अंतिम स्थान बताए, वह यह है 58×4=232। इस प्रकार बादर एकेंद्रीय जीव की ध्रुव स्थिति का आश्रय करके तीन वृद्धियों द्वारा, ये तीन वृद्धियां बताएंगे ब्रह्मा, कौन सी तीन वृद्धियां होगी? पहला कौन सा? असंख्यात भाग वृद्धि, एक एक समय से बढ़ता है असंख्यात भाग वृद्धि हुई, फिर संख्यात भाग वृद्धि, फिर संख्यात गुणा वृद्धि, जब दो गुणा हुआ तो संख्यात गुणा वृद्धि। असंख्यात गुणा वृद्धि होगी कि नहीं होगी? क्यों नहीं होगी? हाँ, क्योंकि देखो दो ध्रुव स्थिति कितनी थी, तो सागर का तीन चतुर्थांश, सॉरी सागर का तीन सप्तमांश माइनस समथिंग, यानी संख्यात पल्ले ही थी, और यहाँ कितने भी बढ़े, चीज कोड़ा कोड़ी भी हो जाए तो भी संख्यात पल्ले ही कहेंगे, तो संख्यात गुणा ही हो सकती है, असंख्यात गुणा नहीं, ये कहना चाहते। ख्याल में है? देखो इस प्रकार, ये 232 है ना लास्ट, नीचे से दूसरी लाइन, इस प्रकार बादर एक इंद्रिय जीव की ध्रुव स्थिति का आश्रय करके, यानी कंपैरिजन उसके साथ की, कितना बड़ा कितना बड़ा कितना बड़ा, इस तरह से तीन वृद्धियों के द्वारा, तीन वृद्धियां होती है, असंख्यात भाग वृद्धि, मनीषा ख्याल में आती बात? तो असंख्यात भाग वृद्धि कब तक होगी? जब तक जघन्य परिता संख्यात से भाग देकर जितना एक खंड प्रमाण वृद्धि होगी उसको कहेंगे असंख्यात भाग वृद्धि। उसके आगे के भी कुछ स्थान, जब तक उत्कृष्ट, हाँ अव्यक्त जिसको कहेंगे छेद वाले, हाँ तो वो भी असंख्यात ही कहलाएंगे। जब जाके उत्कृष्ट संख्यात से भाग देने पर जितना आता है उतनी जब तक वृद्धि नहीं हुए, हाँ तब से संख्यात भाग वृद्धि, ऐसे ही संख्यात गुणा में लेना। तो तीन वृद्धियों द्वारा ज्ञानावरणीय की अजघन्य स्थिति के स्वामित्व की प्ररूपणा की है, यानी बारहवें गुणस्थान से लेकर पहले एक इंद्रिय तक लाया, उसके ध्रुव स्थिति तक, बाद में उसके साथ बढ़ाते हुए लेकर गया। परंतु 132 पेज पर, परंतु जघन्य स्थिति का आश्रय करके संख्यात गुण वृद्धि और असंख्यात गुण वृद्धि, ये दो ही वृद्धियां होती, इसका अर्थ समझाएंगे कोई? लक्ष्मी आप बताएंगे? कौन बताना चाहता है? जरा समझो, शांति रखो, प्रेरणा बिना बताएंगे नहीं? नहीं नहीं, यहाँ क्या संख्यात गुण वृद्धि किसको कहेंगे? नहीं नहीं, जरा शांति शांति, लोगों को सोचने के लिए टाइम चाहिए, सोच सकते हैं, सभी सोच सकते हैं, किसके साथ अभी कंपेयर करना है, पढ़ो पढ़ो फिर। जघन्य स्थिति कितनी होती है? हाँ तो एक स्थिति वो कभी होती है? क्षीण कषाय के अंदर, अभी आप बता दो अश्विन भाई। हाँ हाँ, देखो देखो, जब एक एक निषेक बाकी था वो जघन्य स्थिति है, जब दो निषेक बाकी है तो क्या कहेंगे? संख्यात गुण वृद्धि। तीन समय चार समय संख्यात गुण वृद्धि, जघन्य के साथ कंपेयर करना है। अरे यहाँ क्या लिखा है? वो कब से एक 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 कह रहे थे, उनको इसीलिए चुप बिठाया था। फिर से देखो, हमने पहले किसके साथ कंपेयर की थी? बादर एक इंद्रिय की ध्रुव स्थिति के साथ। वो कितनी थी? वो संख्यात पल्लियों की थी। अब किसके साथ कर रहे हैं? एक निषेक की अपेक्षा बात, तो एक निषेक की अपेक्षा स्थिति दो निषेक प्रमाण हो जाएगी सत्व, तो उसको क्या कहेंगे? संख्यात गुणा वृद्धि कहेंगे। यानी यहाँ संख्यात वा भाग के असंख्यात वा भाग है ही नहीं, क्योंकि हम कंपैरिजन करें एक के साथ, तो असंख्यात गुणा वृद्धि वो तो बारहवें गुणस्थान के अंत में हो जाएगा, क्योंकि वो कृतकृत्य छद्मस्थ ही असंख्यात समयों का है, उसी में वो असंख्यात वृद्धि शुरू हो जाएगी, असंख्यात गुण वृद्धि कृतकृत्य हो जाएगा ना उसके पहले ही, क्योंकि उसके अंतर्मूर्त प्रमाण निषेक है, अंतर्मूर्त में असंख्यात समय होते हैं, यानी उसके पहले ही संख्यात गुणा से असंख्यात गुणा हो जाएगा, समझ? उत्कृष्ट संख्यात के बाद असंख्यात गुणा हो जाएगा नेक्स्ट समय में, यानी उत्कृष्ट संख्यात इतने समय बन जब पीछे आएगा उसके में और एक बढ़ा तो उसको क्या कहेंगे? असंख्यात गुणा वृद्धि। अब बाकी सारे ही स्थान असंख्यात गुण, क्योंकि एक समय की अपेक्षा कितने भी सागरों तक चले जाओ वो असंख्यात ही है, ये कहना चाहते हैं, क्योंकि ओघ जघन्य स्थिति की अपेक्षा, ओघ इन जनरल जघन्य स्थिति की अपेक्षा ओघ उत्कृष्ट स्थिति असंख्यात गुणी पाई जाती है। वो उत्कृष्ट स्थिति यानी कौन सी, वही 37 कोड़ाकोड़ी सागर। इस प्रकार संख्यात पल्योपमों से हीन 30 कोड़ाकोड़ी सागरोपम मात्र ज्ञानावरणीय के अजघन्य स्थान भेदों की प्ररूपना की है। ये संख्यात पल्योपमों से हीन क्यों कहा? हाँ हाँ, वो सांतर स्थान है ना, बीच बीच में हमने कुछ छोड़े थे। देखो 12वें गुणस्थान में तो अंतर्मूर्त अंतर्मूर्त के कांडक होते थे, उसके पूर्व में देखो हमने क्या क्या देखा था, आपको जरा याद दिलाती हूँ, जो शिविर में आए थे उनको तो आसान होगा। हमने क्या देखा था, अनिवृत्तिकरण काल के शुरुआत से, यानी अपूर्वकरण से समझो, पर अपूर्वकरण में जो होते थे उससे सांतर स्थान नहीं होते हैं, क्योंकि अलग अलग जीवों की अलग अलग स्थिति थी। अनिवृत्तिकरण के दूसरे कांडक से लेकर सबकी स्थिति समान, सबके कांडक समान, तो वहां से लेकर सांतर स्थान हो गए। तो एक बार कांडक होता है तो कितना होता है, तो पल्ल्य का संख्यात्वाभाग संख्यात्वाभाग होता है, तो संख्यात्वाभाग होता है। पर शुरुआत में क्या होता है, वो स्थिति सत्व एक केंद्रीय तक घटाते घटाते वो भी सांतर नहीं रहेंगे, वो तो निरंतर हो गए, क्योंकि एक केंद्रियों की अपेक्षा कभी लेंगे, और यह तो अनिवृत्तिकरण की तो अपेक्षा लगती है। जहां जहां एक केंद्रीय के सत्व तक आएंगे तब वो क्षपक श्रेणी की बात लेनी ही नहीं। जब क्षपक श्रेणी वाला जो है तो एक केंद्रीय की जो ध्रुव स्थिति से उसके समान उसके बंद करने के बाद उसने कांडघात किया था, तो वहां से उसके सांतर स्थान हुए थे। तो वो पल्ले का संख्यात्वाभाग वहां सांतर छोड़कर फिर संख्यात्वाभाग छोड़कर आगे चलना, तो उसके संख्यात्वाभाग 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 फिर असंख्यात्वाभाग संख्यात बहुभाग असंख्यात बहुभाग, सारे जो सांतर स्थान है उनकी टोटल करेंगे तो भी वो पल्ले का संख्यात्वाभाग होगा, ये कहना चाहते हैं। एकेंद्रीय के योग्य स्थानों से जो अनिवृत्तिकरण के जो आगे के स्थान हमने देखे 12वें तक के, उसमें जो जो सांतर स्थान है उनकी टोटल करेंगे तो सब मिलकर भी पल्ले का संख्यात्वाभाग होगा, ये उनको कहना है। यानी क्षपक श्रेणी के जो स्थिति कांडक घातों के कारण जितने होते हैं ना वो सारे, क्योंकि अजगण्य में अनुत्कृष्ट में भी हमने शायद देखा था देखो 108 पेज निकालना, देखो पेज नंबर 107 निकालना, उसके पूर्व का। हाँ लिखा है, वही बात वहां से शुरू होती है। यानी हमने देखा था कि जो अनिवृत्तिकरण में तो स्थिति कांड घात होते 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 उसकी स्थिति सत्व एक केंद्रीय के बंध के समान होते हैं, बंध कहो उसका स्थिति सत्व भी कहो। तो देखो पेज नंबर 107 पहली लाइन, इस प्रकार क्षपक श्रेणी में कहकर आए हुए ये सभी स्थिति सत्व स्थान पुनरुक्त ही है, क्योंकि एकेंद्रीय जीव के जघन्य बंध की अपेक्षा ये स्थितियां बहुत पाई जाती हैं। बंध की अपेक्षा ये, और वो सारे जो स्थान एकेंद्रियों में स्थिति कांडक के घात भी हुए थे, पाए गए थे। अब उसके बाद उन्होंने अन्य अन्य अपुनरुक्त स्थान घटित किए थे, परंतु वो एक इंद्रियों में वही स्थान पाए जाते हैं, इसलिए वो अनिवृत्तिकरण के वो स्थान पुनरुक्त कहकर उसको नहीं लिया है। यानी उसमें यही बात बताई यहाँ 107 पेज पर, जब जब वो स्थिति कांड घात होता है एक एक फाली घरती है गिरती है तो निरंतर स्थान होते हैं, जब अंतिम कांड अंतिम फाली गिरती है तो सांतर स्थान होते हैं, सांतर निरंतर सांतर निरंतर। परंतु जहां एकेंद्रीय की अपेक्षा आती है कुछ स्थान तो वो एकेंद्रीय में भी पाए जाते हैं जो यहाँ पाए जाते हैं, इसलिए एकेंद्रियों के योग्य स्थान को छोड़कर बाद में जो है जो सांतर निरंतर उसको ही लेना है। तो अभी 108 पेज पर आना, अंतिम फाली प्रमाण स्थानों का अंतर करके अपुनरुक्त स्थान उत्पन्न होता है। इस प्रकार सेकंड लाइन, निरंतर और सांतर क्रम से स्थान तब तक पाए जाते हैं जब तक क्षीण कषाय गुण स्थान के काल का संख्यात बहुभाग बीतता है। पश्चात क्षीण कषाय जीव के अंतिम स्थिति कांडक की अंतिम फाली के विघटित होने पर क्षीण कषाय के अंतिम समय तक क्षीण कषाय काल के संख्यात पे भाग मात्र उदय क्षय से यानी एक एक उदय रूप होकर निकल जा रहा है, निरंतर अपुनरुक्त स्थान पाए जाते। हम उल्टे क्रम से आए थे क्योंकि हमने जघन्य से अजघन्य की बात देखनी थी, यहाँ उत्कृष्ट से अनुत्कृष्ट की बात हो रही थी। यहाँ क्षपक श्रेणी में प्राप्त निरंतर स्थान अंतर्मूर्त प्रमाण होते हैं, क्योंकि एक कम उत्कीर्ण काल को संख्या हजार रूपों से गुणित करने पर क्षपक श्रेणी में उत्पन्न समस्त निरंतर स्थान प्राप्त होते। क्या कहते हैं, संख्यात हजार बार हुए ना कांडक घात, हर बार संख्यात हजार सबकी टोटल भी संख्यात हजार, तो निरंतर स्थान कितने हो गए। तो एक कम उत्कीर्ण काल, एक कम क्यों का, अंतिम फाली वाला एक समय कम करना, उत्कीर्ण काल यानी स्थिति कांडक घात होने के लिए जितना काल लगता है अंतर्मूर्त प्रमाण, वो एक समय कम उत्कीर्ण काल, और उसको संख्यात हजारों से गुणा करो तो भी वो अंतर्मूर्त प्रमाण ही होगा, ये कहना चाहते हैं। होता है ना, बिल्कुल होता है, ना 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 छोटा छोटा होगा, जहाँ स्थिति सत्व जहाँ छोटा वहाँ कांडक छोटा, बड़ा कैसे होगा। हाँ भले उसको बहुभाग कहेंगे, पर बहुभाग कहने से वो जितना स्थिति शेष है उसका बहुभाग लेना है, कांडक का प्रमाण तो छोटा ही होगा। यहाँ लिखा ना, निरंतर स्थान सब मिलकर भी अंतर्मूर्त हो गए, एक बार के निरंतर स्थान भी अंतर्मूर्त, और संख्यात हजार बार ऐसा हुआ वो भी अंतर्मूर्त। परंतु सांतर स्थान संख्यात ही है, क्योंकि क्षपक श्रेणी में संख्यात ही स्थिति कांडकों का विघटन पाया जाता है। सांतर स्थान कब आए, जब जब वो एक उत्कीर्ण काल के एक समय के लिए, संख्यात हजार स्थिति कांडक हुए तो संख्यात हजार ही समय हो गए जब जब स्थान सांतर स्थान हुए थे, तो सांतर स्थान कितने हो गए, तो संख्यात हो गए। हाँ वो सांतर स्थानों का वो कितने प्रमाण में हो गए, तो वो तो लास्ट लास्ट में अंतर्मूर्त होते, शुरुआत शुरुआत में पल्ले का संख्यात भाग था, तो संख्यात पल्योपम प्रमाण स्थान यहाँ नहीं है। देखो क्षपक श्रेणी में संख्यात ही स्थिति कांडकों का विघटन पाया जाता, लिखा है ना, यहाँ न प्राप्त होने वाले इन स्थानों को कर्म स्थिति में से कम कर देने पर जो शेष रहता है उतना अनुत्कृष्ट स्थान के विकल्पों का प्रमाण होता है, जो अभी हम यहाँ पढ़ते हैं। यानी संख्यात पल्योपम प्रमाण स्थान यहाँ नहीं पाए जाते। देखो यहाँ अभी 132 पर आना, देखो यहाँ क्या कहते हैं, अभी हमने देखा था संख्यात पल्योपम, संख्यात भाग नहीं, संख्यात पल्योपमों से हीन, यानी वो सारे ही टोटल, सभी की टोटल, अभी टोटल कितना करनी है, जितने निषेकों का घात हो गया उसको लेना है। फिर से देखो हम कैसे देख रहे हैं कि जब जब कांडक होता था, एक समय दो समय तीन समय सम, एक कम उत्कीर्ण काल प्रमाण यानी वो अंतर्मूर्त है, वो सारे निरंतर स्थान है, तो श्रेणी में निरंतर स्थान कितने हो गए, तो निरंतर स्थान तो एक एक समय में एक एक निषेक गलता था, तो इसलिए निरंतर स्थान संख्यात हजार अंतर्मूर्त के भी एक अंतर्मूर्त ही होगा, इसलिए अंतर्मूर्त है। और सांतर स्थान को कैसे गिनेंगे, तो प्रत्येक समय में जितना कांडक घात हुआ था, यानी कांडक घात कितने हुए, तो संख्यात हजार, पर संख्यात हजार बार जब हुए तो मिनिमम अंतर्मूर्त और मैक्सिमम पल्य का संख्यात भाग, इसको मिलकर उन्होंने संख्यात पल्य कहा। आप बोलो, अंतर्मूर्त संख्यात पल्लोपम से ही वो नवे गुणस्थान से लेना है. नवे गुणस्थान में स्थिति कितनी थी? अरे एक इंद्रिय के बाद की वाली है ना. जब एक इंद्रिय प्रमाण हो गया उसके बाद एक इंद्रिय की स्थिति कितनी है? संख्यात पल्ले तो थी ना. संख्यात पल्ले बोलो अभी उसको. संख्यात पल्ले थी तो जब संख्यात पल्ले थी तो कांडक घात कितना हो रहा था? पल्ले का संख्यात्वा भाग. संख्यात्वा भाग जब पल्ले प्रमाण स्थिति हुई उसके बाद वाले कांडक पल्ले के संख्यात बहुभाग हुए. जब वो दुरापकृष्टि तक पहुंची तब पल्ले का असंख्यात बहुभाग हुआ. यानी ये सब मिलकर संख्यात पल्ले हो जाता है. हाँ सब कांडों को इनके अंतिम फली की टोटल बेरी, टोटल उसकी टोटल करना है, उसको संख्यात पल्ले कहा. यही बात हमने 108 पेज पर देखी. संख्यात पल्लोपन प्रमाण स्थान यहाँ नहीं पाए जाते. नहीं पाए जाते नहीं, उसके वो कांडक है उतने. समझ में आती है इसका बात? क्योंकि एक बार मैक्सिमम तो पल्ले के संख्यात विभाग हुआ था, बाद में जितनी स्थिति बची थी पल्ले की तो संख्यात बहुभाग, संख्यात बहुभाग. तो एक बार संख्यात बहुभाग गया, फिर जो रिमेनिंग है उसका संख्यात बहुभाग, रिमेनिंग उसका संख्यात बहुभाग. और पहले संख्या सबको मिलकर संख्यात पल्ले कहेंगे. तो संख्यात पल्ले ये तो सांतर स्थान हुए. उससे हीन 30 कोड़ाकोड़ी सागर प्रम मात्र, यानी बाकी तो प्रत्येक एक एक समय के डिफरेंट से सारे अजगण्य स्थान पाए जाएंगे. बीच में जहां जो अनिवृत्तिकरण का संख्यात्वा भाग शेष रहने पर जितनी बातें हुई थी किसके लिए? यही कांड घात के लिए. उतने उतने स्थान यहाँ नहीं पाए जाएंगे. किसी भी जीव को वो स्थान नहीं होंगे क्योंकि एक इंद्रिय से हीन स्थिति तो श्रेणी वाले की होती, क्षपक श्रेणी वाले की. ये समझ में आती है बात? तो ये सारे अजगण्य स्थान वेदों की प्ररूपना की है. यहाँ जीव समुदाहार की प्ररूपना जैसे अनुत्कृष्ट स्थानों में की गई है वैसे ही करनी चाहिए. क्योंकि जो श्रेणी वाले स्थान है उसमें संख्यात जीव कहेंगे. समझ में आती है बात? बाकी एक इंद्रियों से आगे जैसे यहाँ कई किए थे वैसे यहाँ पर बताएंगे. क्योंकि एक इंद्रियों में तो अनंत भी जीव कहेंगे और त्रसों में असंख्यात कहेंगे. अब आगे बढ़ते 132 पेज पर नया सूत्र पढ़ना है. एवं दंशनावरणीय अंतरायाणम, इसी प्रकार दर्शनावरणीय एवं अंतराय कर्मों की जघन्य व अजघन्य स्थिति के स्वामित्व की प्ररूपणा करना चाहिए. क्योंकि उनमें भी ऐसे ही स्थान होंगे. वे भी 30 कोड़ाकोड़ी सागर वाले हैं और वो भी 12वें गुणस्थान के अंत में नष्ट होने वाले हैं. मोहिनी को इसके साथ नहीं लिया क्योंकि वो तो 10वें के अंत में नष्ट होगा, इसलिए उसकी बात प्ररूपणा अलग से करेंगे. जैसे ज्ञानावरणीय हमने पढ़ा ना, इसी प्रकार दर्शनावरणीय अंतराय कर्मों की जघन्य व अजघन्य स्थिति के स्वामित्व की प्ररूपणा करना चाहिए. जैसे ज्ञानावरणीय कर्म की जघन्य व अजघन्य स्थिति के स्वामित्व की प्ररूपणा की है वैसे ही दर्शनावरणीय और अंतराय की भी करना चाहिए क्योंकि उसमें कोई विशेषता नहीं है. सामित्तेन जहन्न पदे वेयणीय वेयणा कालदो जहन्निया कस्स. ज्ञानावरण दर्शनावरण हो गई तो हमेशा वेदिनी का तीसरा नंबर, इसलिए वेदिनी को पहले कह रहे हैं. मोहिनी की बात बाद में शायद कहेंगे. तो यहाँ वेदिनी की बात पूछ रहे हैं. तो स्वामित्व से जघन्य पद में वेदिनी कर्म की वेदना काल की अपेक्षा जघन्य किसके होती है? मनीषा बेन आपको 14वें के अंत में, क्योंकि आघाती है ना वहां पर पड़े है. ख्याल में आती है ना बात? अभी ये शबक श्रेणी चढ़कर आई सुनकर आई. अभी आसान होगा वो. यह सूत्र सुगम है. अभी उसका उत्तर देते हैं. अन्न दरस चरिम समय भव सिद्धियस तस्स वेयणीय वेयणा कालदो जहन्ना. जो कोई जीव भव्य सिद्धिक काल के अंतिम समय में स्थित है, भव्य सिद्धिक उसके बाद वो सिद्ध हो जाएगा. भव्य ने होने योग्य, सिद्ध होने योग्य, चौदहवें गुणस्थान के अंतिम समय तक वो होने योग्य है, और सिद्ध होते को सिद्ध हो चुका भी, उसको योग्य नहीं कहेंगे, सिद्ध हो चुके तो अंतिम समय में स्थित है, उसके वेदनीय की वेदना काल की अपेक्षा जघन्य होती है। अब अन्य दर्शन ने अन्यतर क्यों कहा, कोई भी क्यों कहा, उसकी बात कहते हैं। अवगाहना व संस्थान आदि कों से कोई विशेषता नहीं होती है, यानी कितनी अवगाहना वाले हैं वो केवली, उनका कौन सा संस्थान, क्योंकि छह संस्थानों के साथ केवल ज्ञान और ये हो जाता है। अवगाहना भी हमने देखा था, हमारे आदिनाथ से लेकर महावीर तक अलग अलग अवगाहना होती है, ऐसे कहना है तो 525 धनुष से लेकर 3.5 हाथ तक, हाँ बाहुबली की भी, और वहां विदेह क्षेत्र में भी होती है। तो ये कोई विशेषता नहीं होती, नहीं उसके कारण ये कोई इसमें डिफरेंस नहीं होता, यह जतलाने के लिए सूत्र में अन्यतर पद का प्रयोग किया है। ऐसा भी हम कहते ना, वो क्षपित कर्मावशिक से आया है, गुणित कर्म, उससे कोई मतलब नहीं है, वो कितने द्रव्य कितना है उससे कोई मतलब नहीं। बहुव्य सिद्धिक से, यानी बहुव्य सिद्धिक से क्या मतलब है, अयोग केवली भट्टारक विवक्षित है, अयोग केवली भट्टारक, भट्टारक अरिहंत को भट्टारक कहते हैं। अब बाद में जो कुछ प्रथा पड़ी भट्टारकों की, वो बात वो दृष्टि के सामने नहीं लाना। उनके अंतिम समय में चूंकि एक समय काल वाली एक स्थिति होती है, स्थिति यानी निषेक, यानी भी उनका एक ही निषेक बाकी है, अतः भव्य सिद्धिक के अंतिम समय में जघन्य स्वामित्व बतलाया गया है। शंकाकार पूछते हैं, अयोग केवली के द्विचरमाधिक यानी द्विचरम त्रिचरम वगैरह समयों में जघन्य स्वामित्व क्यों नहीं बतलाया जाता? समाधान, नहीं, क्योंकि उक्त समयों में वेदनीय की एक समय वाली स्थिति नहीं पाई जाती। अब कहते तव वदिरित्तम अजहन्ना, उससे भिन्न अजघन्य स्थिति वेदना होती है, उससे अर्थात जघन्य स्थिति वेदना से जो भिन्न वेदना है वह अजघन्य स्थिति वेदना है। यहाँ जैसे ज्ञानावरणीय के अजघन्य स्थानों की प्ररूपना की गई है, वैसे ही वेदनीय के भी करना चाहिए। विशेष इतना है कि अयोग केवली के अंतिम समय से लेकर अयोग केवली के प्रथम समय तक निरंतर स्थानों की प्ररूपना करना चाहिए। ऐसा क्यों कहा? हाँ प्रेरणा बेन, उसमें निरंतर स्थान क्यों कहे, आप बताने चाहते? हाँ बोलो। कांडक घात नहीं होते, हाँ वही तो, हाँ कांडक घात नहीं होते, तो कांडक घात कहाँ तक होते हैं? संयोग केवली में होते हैं कि नहीं होते? अरे अरे समुद्र घात में तो एक समय में हुए ही हुए थे, उसके बाद संख्यात हजार स्थिति कांडक हुए थे अंत समय तक, समझ में आई बात? हाँ देखो, तो अयोग केवली के प्रथम समय तक निरंतर स्थानों की प्ररूपणा करना चाहिए, फिर संयोग केवली गुणस्थान के अंतिम समय में स्थित जीव के शांतर अजघन्य स्थान होता है, क्योंकि यानी वो अंतिम फाली वहां खिरती है, अंतिम फाली खिर के अयोगी के समय बाकी रहे उनके, तो उसके अंतिम समय में अंतिम फाली बाकी थी तो वहां अंतिम फाली अंतर्मूर्त प्रमाण देखी जाती है, क्योंकि जब देखे थे जो समुद्घात कर रहे थे वहां तो पल्ले के असंख्यात विभाग प्रमाण सत्व बाकी था, एक एक समय में एक एक बड़ा कांडक हुआ, और उसके बाद यानी चार कांडक तो वहां हुए, उसके पश्चात लोक पुरण के पश्चात अंतर्मूर्त प्रमाण कांडक ग्रहण किए थे, और वो अंतिम कांडक की अंतिम फाली सयोगी के अंतिम समय में हुई थी, तो वहां शांतर स्थान हो गए, क्योंकि वहां अंतिम फाली अंतर्मूर्त प्रमाण देखी जाती है। पुनः नीचे एक कम उत्कीर्ण काल प्रमाण निरंतर स्थानों के उत्पन्न होने पर एक बार शांतर स्थान उत्पन्न होता है, क्योंकि वहां अंतर्मूर्त स्थानांतर देखा जाता है, यानी लास्ट लास्ट में तो अंतर्मूर्त प्रमाण वाले तो होते हैं, उत्कीर्ण काल भी अंतर्मूर्त है, तो एक समय कम तक तो निरंतर स्थान, और उसमें बाद में एकदम जितना जो कांड ग्रहण किया था उसमें शांतर हो जाता है। इस प्रकार लोक पूर्ण समुद्घात को करके स्थित सहयोगी केवली तक ले जाना चाहिए। हमने देखा था ना, उल्टे क्रम से वहां तक ले गए। पश्चात प्रतर समुद्घात गत केवली में अन्य अपुनरुक्त शांतर स्थान होता है, क्योंकि लोक पूर्ण समुद्घात केवली के स्थिति सत्व से प्रतर समुद्घात गत केवली का स्थिति सत्व असंख्यात गुणा पाया जाता है। क्योंकि उसने असंख्यात गुणा क्यों, असंख्यात बहुभाग उसने कांडक घात किया था, वहां का कांडक घात असंख्यात बहुभाग प्रमाण हुआ था। ये कांडक आयाम जो था ना, वहां का कांडक आयाम असंख्यात बहुभाग था, इसलिए उसका स्थिति सत्व असंख्यात गुणा था कहेंगे। समझ में आती है बात? कांडक आयाम असंख्यात बहुभाग था, यानी प्रतर वाले का कांडक आयाम, प्रतर वाले ने जो कांडक आयाम किया था असंख्यात बहुभाग किया था, यानी कांडक घात होने के पश्चात क्या बाकी रहा, असंख्यात वह भाग शेष रहा। तो लोक पूरण वाले से प्रतर वाले की स्थिति सत्व कितना था, असंख्यात गुणा था। ख्याल में, क्योंकि वहां एक समय में एक कांडक हुआ, जैसे उत्कीर्ण काल अंतर्मूर्तक होता है और बाद में एक एक समय घटते घटते फिर ऐसा नहीं है, यहाँ एक एक समय में एक एक शांतर स्थान होगा। यानी लोक पूरण के स्थिति सत्व से असंख्यात गुणा प्रतर वाला था, उसके पूर्व में असंख्यात गुणा था, इस तरह से लेना है। पश्चात कपाट समुद्घात गत केवली में अन्य शांतर अपुनरुक्त स्थान होता है, यानी अंतर के शांतर अपुनरुक्त, यानी अंतर करके अपुनरुक्त, सबके लिए समान होगा अभी यहाँ पर, क्योंकि प्रतरगत केवली के स्थिति सत्व से कपाटगत केवली का स्थिति सत्व असंख्यात गुणा पाया जाता है। पश्चात दंड समुद्घात केवली में अन्य शांतर अपुनरुक्त स्थान होता है, क्योंकि कपाट समुद्घात केवली के स्थिति सत्व से दंड समुद्घात गत केवली का स्थिति सत्व असंख्यात गुणा पाया जाता है। दंड समुद्घात के अभिमुख हुए केवली में अन्य शांतर अपुनरुक्त स्थान होता है, क्योंकि दंड समुद्घात केवली के स्थिति सत्व से उसके अभिमुख हुए केवली में असंख्यात गुणा स्थिति सत्व देखा जाता है। क्योंकि दंड किया तो उसने कांडक करके वो दंड भी किया, दंड भी किया और कांडक भी किया, तो वहां स्थिति सत्व उसको असंख्यात गुणा घटा था, तो उसके पूर्व समय में बड़ा था। यहां से लेकर नीचे क्षीण कषाय के अंतिम समय तक निरंतर स्थान उत्पन्न होते, अभी यहाँ कांडक घात नहीं हो रहे थे, जो केवली का काल है वहां कोई कांडक घात नहीं हो रहे थे। कांडक घात कब हुए, समुद्घात में हुए, और समुद्घात के पहले उसका करण का नाम क्या था, याद है? हाँ बोलो बोलो। आवर्जित करण, हाँ आवर्जित करण। उसमें विशेषता क्या हुई थी, अंतर्मुख पहले, समुद्घात के अंतर्मुख पहले आवर्जित करण होता है, उसमें विशेषता क्या हुई थी? देखो, जो गुण श्रेणी का आयाम था ना वो छोटा हुआ था, और अपकर्षण का प्रमाण असंख्यात गुणा बढ़ गया था उस समय, और बाद में जाकर वहां कांडघात बाद में हुए दंड में, यानी वो समुद्घात के सन्मुख पना, यही वहां आवर्जित, यानी अंतर्मूर्त पहले उसको आवर्जित करण कहने में आता है। वहां से गुणश्रेणी का आयाम छोटा होता है और अपकर्षण द्रव्य असंख्यात गुणा हो जाता है, इसलिए स्वस्थान केवली से समुद्घात केवली का जो गुणश्रेणी निर्जरा है वो असंख्यात गुणा कहने में आती है। वहां नहीं, कांडघात दंड में शुरू हुआ, उसके पहले नहीं, दंड में एक कांडक, कपाट में एक कांडक, प्रतर में एक कांडक, लोकपुरण में एक कांडक, बाद में वो तो अंतर्मूर्त अंतर्मूर्त में एक एक कांडक हो गए, पहले तो समय समय में होते थे। नहीं होते, आने की जो कांडक शुरू हुआ था तो अंतर्मूर्त के बाद ही समाप्त होगा, जैसे चढ़ते समय चार कांडक हो गए वैसे नहीं हो गया अभी। नहीं, गुण श्रेणी का प्रमाण चौदह गुण स्थान का प्लस कैसे होगा? नहीं होता। देखो यहाँ तो अवस्थित होगी ना, बाद में जाकर वो निकालेंगे। आप वो श्रेणी के चढ़ते समय वाली बात वो यहाँ मत करना। नहीं नहीं नहीं, जाके पढ़ो। अभी शिविर में नहीं आने वालों को ऐसे डायरेक्ट उत्तर नहीं मिलेगा। अब शिविर वालों को पूछो कितना 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 उन्होंने मेहनत करके सुना है ना। हाँ देखो देखो, उससे ज्यादा नहीं होता वहां पर। उसके ज्यादा होने के लिए उसके कहाँ है, उसके उतने। हाँ देखो, क्योंकि कितने कितने जगह वो उदयादि अवस्थित होती है, कहीं कहीं वो तो गलितावशेष होती है, वो सारे भेद वहां जानने पड़ेंगे। देखो ये हो गया ना, अभी यहां से लेकर नीचे क्षीण कषाय के अंतिम समय तक निरंतर स्थान उत्पन्न होते हैं। हमने देखा था कि क्षीण कषाय के बाद केवल यानी तेरहवें गुण स्थान में वहां कोई स्थिति कांडघात नहीं हो रहे थे। स्थिति कांडक जब वो समुद्घात होगा तभी शुरू हो जाएंगे। इसके नीचे निरंतर और स्थान सांतर क्रम से ज्ञानावरणी के विधान के अनुसार अजघन्य स्थानों की प्ररूपना करना चाहिए, क्योंकि उनमें कोई विशेषता नहीं है। तो इसके नीचे के जो स्थान है, परंतु यहाँ पर उसकी स्थिति तो पल्ल्य का असंख्यात्वा भाग है। हाँ, उसका वो जो सांतर का जो प्रमाण है वो अलग होगा, पर लास्ट में तो संख्यात पल्ल्य इतना ही कहेंगे। इसके स्थिति कांडक अधिक हो गए, इसलिए उसके थोड़े से स्थान ज्यादा भी हो सकते हैं, है ना। वैसे उसके निरंतर स्थान भी ज्यादा होगी, क्योंकि तेरहवें और चौदहवें के काल भी हमने इंक्लूड कर दिए हैं उस अपेक्षा से। इसी प्रकार नहीं, एवं आयु नामा गोदानम, इसी प्रकार आयु नाम और गोत्र कर्मों के जघन्य एवं अजघन्य स्वामित्व की प्ररूपना है। आयु में कोई डिफरेंस होगा उसकी बात बताएंगे। हाँ, क्योंकि वो जघन्य वहां पर होता है चौदहवें के अंतर में, इसलिए वहां उसको बोला। जैसे वेदनीय कर्म के जघन्य व अजघन्य स्वामित्व की प्ररूपना की गई है, वैसे ही इन तीनों कर्मों के जघन्य व अजघन्य स्वामित्व की प्ररूपना करना चाहिए, क्योंकि उसमें कोई विशेषता नहीं है। विशेष इतना है कि हाँ देखो क्या कहना चाहते हैं, विशेष इतना है कि विशेषता नहीं है कहकर फिर विशेष इतना है कि कह रहे आयु कर्म के अजघन्य स्वामित्व की प्ररूपना में जो कुछ विशेषता है उसे कहते हैं। यानी नाम और गोत्र में तो ऐसा ही होगा, जैसे अभी हमने वेदनी में देखा था, चौदहवें के अंत के उल्टे क्रम से आएंगे हम। आयु में क्या होगा, आयु भी एक समय की कब रहेगी, चौदहवें के अंतर अंत अन्यत्र कहीं हो सकती है एक समय की। हम आप मरेंगे तो एक समय की आयु रहेगी कि नहीं रहेगी, पर तभी तो बधाई होगी कि नहीं दूसरी। बांधे बिना तो मरते नहीं है, तो एक समय की हमारी कभी नहीं होने वाली, वो एक समय की चौदहवें के अंत में ही होने वाली, एक समय दो समय तीन समय। तो ये जो मिनिमम आयु जो होती है यानी बंधनीय आयु, फिर वो यानी असंक्षेपाध्याय मिलकर भी वहां तक तो सारे विकल्प तो उल्टे क्रम से चौदहवें में ही गिनने पड़ेंगे हमको, चौदहवें फिर तेरहवें के कुछ समय। देखो क्या कहते हैं, विशेष इतना कि आयु कर्म के अजघन्य स्वामित्व की प्ररूपना में जो कुछ विशेषता उसे कहते हैं। यथा भव्य सिद्धिक रहने के द्विचरम समय में एक अजघन्य स्थान होता है, पश्चात त्रिचरम समय में समय में द्वितीय अजगण्य स्थान होता है, चतुष्चरम समय में तृतीय अजगण्य स्थान होता है, यहाँ दुगुणी वृद्धि होती है। अजगण्य की दुगुनी वृद्धि, यानी दो समय वाले से तीन समय वाला हो गया ना। यहां से संख्यात गुण वृद्धि प्रारंभ होकर तब तक जाती है जब तक कि उत्कृष्ट संख्यात गुणकार स्वरूप से दो समय प्रविष्ट नहीं हो जाते। क्या कहते हैं? उत्कृष्ट संख्यात गुणा, उत्कृष्ट संख्यात गुणकार स्वरूप से दो समय प्रविष्ट नहीं हो जाते, यानी संख्यात गुणा वृद्धि दो गुणा तीन गुणा चार गुणा हुआ, कितने गुणा हो जाएंगे? उत्कृष्ट संख्यात गुणा। पश्चात इसके ऊपर एक समय की वृद्धि होने पर संख्यात गुण वृद्धि ही रहती है। संख्यात गुण वृद्धि क्योंकि असंख्यात गुणा कहने से बीच वाले जो विकल्प है वो छेद गुणकार रूप से हो गए, क्योंकि वहां अर्ध रूप से अधिक उत्कृष्ट संख्यात प्रमाण गुणकार पाया जाता है। तत्पश्चात उससे अनंतर अधस्तन समय में असंख्यात गुण वृद्धि होती है, क्योंकि वहां दो समयों का जघन्य परिता संख्यात गुणकार पाया जाता है। यानी अभी और बढ़ेंगे तो जघन्य परिता संख्यात गुणा हो जाते हैं। इसके आगे एक समय अधिक छह मास स्थिति तक असंख्यात गुण वृद्धि के द्वारा उतारना चाहिए। पश्चात आयुबंध से रहित होकर स्थित सर्वार सिद्धिस्थ देव की एक समय अधिक छह मासों से कम 33 सागरोपम प्रमाण आयु को गलाकर स्थित हुए जीव की आयु इस आयु के सदृश होती है। देखो क्या कहना चाहते हैं। हाँ देखो क्या कहा था हमने, उल्टे उल्टे गए ना, कहाँ तक उल्टे गए? छह महीने उल्टे तक, क्योंकि ये सभी कैसे है, अभी तो मोक्ष जाने वाले, उन्होंने आयु का बंध ही नहीं किया है, इसलिए उल्टे क्रम से यहां तक आए। देखो तो असंख्यात गुण वृद्धि होती है तो कहां तक पीछे चले जाएंगे? हाँ, जघन्य परिता संख्यात गुणकार, उसके आगे एक समय अधिक छह मास स्थिति तक असंख्यात गुण वृद्धि के द्वारा उतारना चाहिए। पश्चात आयुबंध से रहित होकर स्थित, यानी अभी आयु का बंध नहीं किया ऐसा जीव लेना है, सर्वा सिद्धिस्थ देव की एक समय अधिक छह मासों से कम 33 सागरोपम प्रमाण आयु को गलाकर स्थित हुए जीव की आयु इस आयु के सदृश होती है। समझ में आते बार? यानी उसने आयु का बंधन नहीं किया है ऐसा जीव लेना सर्वा सिद्धि का। वो कब आयु का बंध करेंगे? तो छह महीने पहले। तो छह महीने पहले करेंगे तो उसका एक समय और पूर्व में लेना। पूर्वोक्त जीव को छोड़कर और इससे ग्रहण करके एक एक समय की अधिकता के क्रम से निरंतर बढ़ाकर सर्वार्थ सिद्धि में उत्पन्न हुए देव की उत्पत्ति के प्रथम समय तक ले जाना चाहिए, क्योंकि जो उसमें उत्पन्न होने के समय में उसकी अभी आयु कितनी, कौन सी आयु, क्या कुछ नहीं, आयु कितनी शेष है उसकी, इस तरह से सोचना है। 33 सागर की आयु उसकी शेष है। पूर्वोक्त जीव को छोड़, ये हो गया ना, पुनः 33 सागरोपम प्रमाण आयु को बांधकर मनुष्य भव के अंतिम समय में स्थित संयत के यह पुनरुक्त स्थान होता है। अभी वो मनुष्य में है, मनुष्य का एक समय, मनुष्यायु का एक समय और देवायु के 33 सागर के समय, ये है ना उसका स्थान। हम एक एक समय पीछे पीछे जा रहे थे, पहले एक एक समय पीछे आते 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 पूर्व भव में चले गए, छह महीने की बात की थी, फिर पूर्व भव में चले गए थे। देखो 6 महीने क्यों लिए, 6 महीने पूर्व में क्यों गए? तो देखो, हाँ 6 महीने पूर्व ने भले ना आयु सहयोगी का काल हम गिनते हैं, तो 6 महीने की आयु ली, तो 6 महीने की आयु के पहले कौन सी आयु लेना? अभी वो सर्वार्थ सिद्धि वाला लेना, अन्य भी जीव ले सकते हैं पर हम उसको लेना है क्योंकि हमको निरंतर स्थान उत्पन्न कराने थे, यानी नहीं आयु जिसने नहीं बांधी हुई ऐसा जीव लिया। 6 महीने तक तो इसी जीव को पीछे पीछे ले गए, कौन से? आयोगी से, जिसकी अभी आयु 6 महीने शेष है ऐसा जीव लिया था। वो 6 महीने की आयु अन्यत्र भी कहीं कहीं घटित होती है, हमें उससे कुछ लेना देना नहीं। हम किसी एक जीव की अपेक्षा घटित कर रहे हैं, वो अन्य भी जीवों में घटित होगा, ख्याल में आते हैं बात? तो अभी 6 महीने पहले उसने भी आयु बांधी है, ये यहाँ लिया, मनुष्य में लिया, जो क्षपक श्रेणी चढ़ने वाले के 6 महीने तक, फिर देवी में चले गए, यानी यहाँ कैसे लिया कि देव में गए ने वो आयु नहीं बांधी ऐसा देव लिया, तो आयु नहीं बांधी ऐसा देव लिया तो उसकी आयु कितनी शेष रही है अभी? 6 महीना, यानी इस जीव के साथ उस जीव को लेना, क्योंकि आयु बंधी हुई अगर लेते हैं तो वो आगे वाली आयु जो करोड़ पूर्व की हो या 100 साल की जितनी हुई उसको गिनना पड़ेगा। पहले मनुष्य आयु को 6 महीने बाकी है, वहां तक ले गए, नहीं लेना 6 महीने के ही ले, 6 महीने मनुष्य आयु बाकी थी। अब वहां ऐसा देव में गया कि जिसने आयु का बंधन नहीं किया है, यहाँ तो 6 महीने तक तो यहाँ स्थान मिले, और 6 महीना एक समय पहले देव का स्थान लिया कि उसने आयु नहीं बांधी है तो उसके देवायु कितनी शेष है? 6 महीना और एक समय, 6 महीने 2 समय, 6 महीने 3 समय, तो 33 सागर के पहले समय तक लेना। आयु कोई भी हो बस इतना लेना है, कौन सी आयु उससे मतलब नहीं है। तो 33 सागर तक आ गए ना, तो उसके सत्ता में आयु कितनी शेष है? तो 33 सागर की आयु, क्योंकि वर्तमान अभी अभी जय में आया है। उसके पूर्व समय में क्या था? तो संयम ही था, वो अंतिम समय था। अंतिम समय में मनुष्य आयु का एक समय बाकी था कहो, या देवायु भी उसकी सत्ता उतनी पड़ी थी, यहाँ मनुष्य आयु का एक समय था और 33 सागर की देवायु थी। अब उसके पीछे पीछे चलो, अभी आगे पढ़ेंगे हम। मनुष्य भव के द्विचरम समय में स्थित संयत के अन्य अपुनरुक्त स्थान होता है, यानी 33 सागर और 2 समय। इस प्रकार पूर्व कोटि त्रिभाग के प्रथम समय में स्थित संयत तक असंख्यात गुण वृद्धि के द्वारा उतारना चाहिए। वो कितनी वृद्धि है एक समय की अपेक्षा? तो असंख्यात गुण वृद्धि है, समझ में आते हैं बात? तो हमने ये जब उसने आयु बांधी थी, 1/3 पूर्व कोटि उसकी मनुष्यायु शेष थी, बाकी तो उसने गला दी थी, अब उसने देवायु बांधी, तो ये 1/3 पूर्व कोटि और 33 सागर आयु के इतने निषेक उसके सत्ता में पड़े। यहाँ जीव समुदाहार को जानकर कहना चाहिए, यानी वहां जीवों की कितनी संख्या होगी तो उसको जानकर कहना चाहिए, बस इतनी बात है। ये आयु की जो विशेषता है उसकी बात यहाँ बताई। तो आयु में सारे ही निरंतर स्थान देखे अभी हमने, उसमें सांतर वाले नहीं देखे थे। सामित्तेन जहन्न पदे मोहनीय वेणा कालदो जहन्निया कस। स्वामित्व से जघन्य पद में मोहनीय कर्म की वेदना काल की अपेक्षा जघन्य किसके होती है, किसके होगी? अभी 10वें के अंत में होगी, 10वें का अंतिम समय। यह सूत्र सुगम है। अन्नदरस्य खवगस्य चरिम समय स कसायस्य मोहनीय वेणा कालदो जहन्ना। जो कोई क्षपक उपवरोवर करो सकषाय अवस्था के अंतिम समय में स्थित है, सकषाय ने वो बाद सूक्ष्म लोक का उदय ना, उस सकषाय सांप्राय है ना, सूक्ष्म सांप्राय 10वें गुणस्थान के अंतिम समय में स्थित है, उसके मोहनीय कर्म की वेदना काल की अपेक्षा जघन्य होती है। सूत्र में क्षपक पद के निर्देश का प्रयोजन उपशामक का प्रतिषेध करना है, तो उपशामक का प्रतिषेध क्यों किया है? हाँ, उसकी स्थिति तो अंत कोड़ा कोड़ी पड़ी है, उसको उपशमित किया है उसने, सत्ता में तो है। हाँ बिल्कुल होगा, परंतु यहाँ सत्व कितना है उसको हम गिने, काल की अपेक्षा सत्व को गिनना है। सकषाय पद के निर्देश का फल क्षीण कषाय आदिकों का प्रतिषेध करना है, क्योंकि आगे के गुणस्थानों में उसका सत्व नहीं है, बारहवें में तेरहवें चौदहवें में। द्विचरम सकषाय आदिकों का प्रतिषेध करने के लिए सकषाय को चरम समय विशेषण से विशेषित किया गया है, क्योंकि द्विचरम में तो दो निषेक बाकी हो गए। अभिप्राय यह है कि स्पेस चाहिए बीच में। सूक्ष्म सांप्राय गुणस्थान के अंतिम समय में स्थित जीव के मोहनीय की वेदना काल की अपेक्षा जघन्य होती है, वहां एक ही निषेक उसका बाकी है। तब वदिरित्तम अजहन्ना, उससे भिन्न अजघन्य वेदना होती है। इस सूत्र के अर्थ की प्ररूपणा ज्ञानावरण के अजघन्य स्वामित्व की प्ररूपणा करने वाले सूत्र के समान करना चाहिए। उसमें भी ऐसा है ना, वो दसवें गुणस्थान में उल्टे क्रम से आना, हम अंतिम कांडक की अंतिम फाली खिरती है तब जाके स्थान्तर स्थान होगा, बाकी उल्टे क्रम से वो तो निरंतर स्थान हो गए, फिर स्थान्तर, फिर निरंतर, फिर स्थान्तर, इस तरह से। उसमें भी कांडक घात होते हैं ना, कांडक घात के बिना नष्ट कैसे हो गए सत्ता। कांडक घात से ही सत्ता नष्ट होती है। पहले दसवें नवे के अंत में कृष्टिया करने का कार्य हुआ, दसवें में कृष्टि का उदय हुआ, कृष्टि का उदय हुआ। अभी भी यहाँ पर अंतर पूरा दिया जाता है, पहले ही समय से शपक श्रेणी में वो अंतर पूरा दिया जाता है, और नीचे से ऊपर तक गुण श्रेणी भी हुई और कांडक घात भी होते हैं। तो अंतिम कांडक की अंतिम फाली कैसे दी थी, हमने आपको एक उदाहरण दिया था, दस समय मान लेते स्थिति बाकी है, दसवें के संख्यात्वा भाग, तो नौ समयों में एक भाग दिया और असंख्यात बहुभाग अकेले एक निषेक में दिया था, दो पर्व किए थे, तब जाके अभी उसके एक एक समय गलेगा अंतिम कांडक खिरने के बाद, उसमें भी कांडक घात हो गई। बिना कांडक घात के कैसे उसकी स्थिति कैसे घटेगी। क्योंकि हमने देखा था ना, दसवें में आते ही पहले कांडक घात से ही तो अंतर पूरा दिया गया था, आपको एक वो ये चित्र बनाया था ना, नीचे गुण श्रेणी में देता है, फिर वो अंतर में दिया जाता है थोड़ा थोड़ा करके, अंतिम फाली जब खिरती है एक निषेक रचना हुई, नीचे गुण श्रेणी और ऊपर इस तरह से, और वहां कांडघात होते ही रहते हैं। हाँ हाँ, देखो ये अजन्य 24 का सूत्र थे, तब विदरिदम अजहन्य उसका अर्थ देखते थे, उससे भिन्न अजघन्य वेदना होती है। इस सूत्र के अर्थ की प्ररूपणा ज्ञानावरण के अजघन्य स्वामित्व की प्ररूपणा करने वाले सूत्र के समान करना चाहिए। इस प्रकार स्थान संख्या एवं जीव समुदाहार से गर्भित स्वामित्व अनुयोग द्वार समाप्त हुआ। पहले उन्होंने उत्कृष्ट अनुत्कृष्ट की बात की, अब जघन्य अजघन्य की करेंगे। तो उसमें अनुत्कृष्ट में भी उन्होंने बताई होगी, वो देख लो मोहनीय पर, आपको शंका है तो। अभी हमने 108 पे कौन सा देखा था, ज्ञानावरणी के पेज नंबर 112 अनुत्कृष्ट, मुनि की उत्कृष्ट स्थिति 70 कोड़ाकोड़ी, और अनुत्कृष्ट का कथन करते समय संगी पंचेन्द्रिय मिथ्या दृष्टि से लेकर अंतिम समयवर्ती सूक्ष्म सांप्राय तक स्वामी है, ये बताया था उन्होंने। वहां पर भी वो विचार स्थान वगैरह की बात बताई थी, ये तो हो चुका अपने, हमने देख लिया था। यानी वो एकेंद्री के बाद वो जो कांडक की अपेक्षा तो क्षपक श्रेणी में होते, उसी की बात लिए थे, है ना। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर ये हमने अल्प ये भी देखा क्या, स्वामित्व पदमीमांसा स्वामित्व, अभी अल्प बहुत देखेंगे। सूत्र अप्पा बहुए ती तथ इमानी तिन्नी अनुयोग दाराणी जहन्न पदे उक्कस पदे जहन्न उक्कस पदे। अब अल्पभूतव अनुयोग द्वार का अधिकार है, उसमें ये तीन अनुयोग द्वार हैं, जघन्य पद में, उत्कृष्ट पद में और जघन्य उत्कृष्ट पद में। शंका, इस अधिकार में तीन ही अनुयोग द्वार है, यह कैसे जाना जाता है? समाधान, चूंकि जघन्य व उत्कृष्ट पद में एक व दो के संयोग से होने वाले तीन भंगों को छोड़कर इनसे अधिक भंगों की उत्पत्ति नहीं देखी जाती है। क्या कहना चाहते हैं? यहाँ दो ही बातें हैं, कौन सी? जघन्य और उत्कृष्ट, यानी ए और बी। तो कॉम्बिनेशन क्या क्या हो सकते हैं? ए को अकेला रखो, बी को अकेला रखो, ए बी को एक साथ रखो। जहां तीन होते ही चीजें ए बी और सी, वहां कितने होते? सात भंग होते हैं। ध्यान में ना, यहाँ दो है यानी 2 × 2 = 4 − 1, तीन ही भंग हो गए, ये कहना चाहते हैं। अधिक भंगों की उत्पत्ति नहीं देखी जाती, अतः इसी से जाना जाता है कि उससे तीन ही अनुयोग द्वार है, यानी अकेले जघन्य के साथ जघन्य के कंपेयर, उत्कृष्ट के साथ उत्कृष्ट और जघन्य उत्कृष्ट दोनों की बात होगी। कहते जघन्य पदेन अठन्नमपि कम्माणम वेयणाओ कालदो जघन्याओ तुल्याओ। क्या कहते हैं? अभी जघन्य, अब तुलना किसमें करनी है? कौन से कर्मों की जघन्य छोटी होगी या बड़ी होगी? सबकी जघन्य एक समय वाली है, सबकी तुल्य होगी, तुल्य है ना, तुल्य होगी, समान होगी। तो कहते जघन्य पद की अपेक्षा, अभी उत्कृष्ट पद की अपेक्षा अलग अलग है, कोई 70 कुड़ाकुड़ी वाला, कोई 30 कुड़ाकुड़ी वाला, कोई इस तरह से, कोई 20 वाला है और आयु को तो 33 सागर वाली है, वो डिफरेंट है। जघन्य सबकी एक समय वाली है, तो जघन्य पद की अपेक्षा आठों ही कर्मों की काल से जघन्य वेदनाएं तुल्य है। कारण यह है कि आठों ही कर्मों की एक एक समय काल वाली एक स्थिति को जघन्य काल वेदना ग्रहण किया गया है। शंका, परमाणु से यहाँ काल के भेद को क्यों नहीं ग्रहण किया गया है? यानी यहाँ पर नंबर ऑफ परमाणु की बात क्यों नहीं उठाई? उसका समझ नहीं, क्योंकि काल को छोड़कर यहाँ प्रदेशों की विवक्षा नहीं की गई है। हमने वो देखा था, वो तो द्रव्य प्रमाण की बात अलग बात थी, द्रव्य विधान जो था, वेदना द्रव्य विधान, उसकी बात अलग थी, अभी है काल की बात चल रही। अथवा समय स्वरूप से अभेद को प्राप्त हुए समय विशेष में परमाणु का प्रवेश होने से काल भेद को ग्रहण नहीं किया गया है, यानी उसी में वो उसी एक समय में सभी परमाणु समा गए हैं, तो उसमें कोई बात नहीं है। चूंकि ये आठों ही काल वेदनाएं परस्पर समान है, अतः जघन्य अल्पभूतव नहीं है, यह भावार्थ है। जघन्य में अल्पभूतव नहीं है, सभी समान है। अब उक्कस्य पदेन सौवत्थोवा आऊव वेयणा कालदो उक्कस्या। उत्कृष्ट पद की अपेक्षा काल से उत्कृष्ट आयु कर्म की वेदना सबसे स्थूल है, यानी सबके उत्कृष्ट में सबसे छोटी कौन सी है? तो आयु की उत्कृष्ट सबसे कम है, ये कहना चाहते। सबके उत्कृष्ट की कंपेरिजन करेंगे, आयु का उत्कृष्ट कितना है? 33 सागर। हाँ, 33 सागर में भी हमने देखा था अवंतर पूर्व कोटि प्लस 33 सागर, और फिर आगे के जो अलग अलग ज्ञानावरण आदि की तो 30 कोड़ाकोड़ी है, वेदनीय नाम गोत्र की 20 है, वगैरह वगैरह। देखो उसका कारण बताते हैं। उत्कृष्ट पद की अपेक्षा काल से उत्कृष्ट आयु कर्म की वेदना सबसे स्तोक है। कारण यह है कि वह पूर्व कोटि के तृतीय भाग से अधिक 33 सागरों का प्रमाण बताए ना। क्योंकि जब से बंद हुआ और उसकी सत्ता कितनी बड़ी है, तो 33 सागर के तो निषेक बने और आबाधा काल उसी में इंक्लूड करने है, तो पहले समय में आयु बंद के पहले समय से लेना है उसको। नामा गोद वेयणाओ कालदो उक्कस्याओ दोवी तुल्याओ संख्य जुगुणाओ। उससे नाम व गोत्र कर्म की काल से उत्कृष्ट वेदनाएं दोनों ही तुल्य व संख्यात गुणी है, इन्हें दोनों के आपस में समान है। कितनी है? 20 कोड़ाकोड़ी सागर, और आयु की कितनी है? 33 सागर कुछ अधिक। तो 33 सागर है और 20 कोड़ाकोड़ी सागर है, तो कितने गुणा है? संख्यात गुणा है ना, अनेक कोड़ाकोड़ी भी हो जाए फिर भी उसको संख्यात गुणा कहेंगे, असंख्यात गुणा तो नहीं कहेंगे। तुल्य संख्या, कारण यह कि वे 20 कोड़ाकोड़ी सागरोपम प्रमाण है। गुणकार यहाँ संख्या समय है। अभिप्राय यह है कि एक रूप के असंख्यातवे भाग से अधिक 33 सागरोपमों की पल्योपम शलाकाओं का, 20 कोड़ाकोड़ी सागरोपमों की पल्योपम शलाकाओं में भाग देने पर जो एक भाग लब्ध होता है वह यहाँ गुणकार है। यहाँ क्या कहना चाहते हैं, 33 सागर प्लस 1/3 पूर्व कोटि, उसके पल्ले करो और 20 कोड़ाकोड़ी सागर के पल्ले करो, तो इस पल्लों का इस पल्ले से भाग दो तो हमें संख्यात का प्रमाण मिलेगा। फिर से ऊपर क्या लिखना है, 20 कोड़ाकोड़ी, तो 20 कोड़ाकोड़ी ये क्या है, सागर है, तो सागर के बदले अगर पल्ले लिखना है तो 10 कोड़ाकोड़ी पल्ले, यानी 20 कोड़ाकोड़ी इंटू 10 कोड़ाकोड़ी, यानी 200 कोड़ाकोड़ी कोड़ाकोड़ी और डिवाइडेड बाय 33 सागर है, तो 33 इंटू 10 कोड़ाकोड़ी यानी 330 कोड़ाकोड़ी। फिर भी 200 कोड़ाकोड़ी रहेगी ऊपर और नीचे 330 केवल रहेगी, यानी ऊपर 20 कोड़ाकोड़ी नीचे 33 और उसमें 1/3 पूर्व कोटि को क्या लिया, एक का असंख्यात भाग लिया, एक रूप के असंख्यात भाग से अधिक 33 सागरोपम, उस 33 सागरोपम के पल्ले शलाका है और ये पूर्व कोटि भी पल्ले के असंख्यात भाग में असंख्यात होते हैं, इसी यानी पल्ले उससे असंख्यात गुणा है, तो 1/3 पूर्व कोटि के एक का असंख्यात भाग है, यानी यहाँ हमने जितना लिया था ये इसका असंख्यात भाग हो जाएगा। ख्याल में आती है बात, यानी किसका असंख्यात भाग होगा, पल्ले का असंख्यात भाग होगा, यानी वो बहुत छोटी संख्या आ जाएगी, तो ये संख्यात गुणा कहेंगे हम इसको, है ना, 33 से 20 कोड़ाकोड़ी कितने गुना होगा तो संख्यात गुणा हो जाएगा। समझ में आई बात, फिर से यहाँ क्या किया है, अभी पल्ले को भूल जाओ, नाम और गोत्र कर्म की उत्कृष्ट स्थिति कितनी है, 20 कोड़ाकोड़ी सागर सागर, और हमारे यहाँ कितने, 33 सागर प्लस उसका असंख्यात भाग है, सागर का असंख्यात भाग, पल्ले का असंख्यात भाग है, सागर का असंख्यात भाग, यहाँ तक समझ में आई बात। अभी असंख्यात भाग भूल भी जाओ तो 20 कोड़ाकोड़ी सागर को 33 सागर से सा सा निकल गया तो ऊपर आ गया 20 कोड़ाकोड़ी और नीचे आ गया 33, तो ये कितने गुना है, तो संख्यात गुना है, इतना ही, अनेक कोड़ाकोड़ी गुना है उसको हम संख्यात गुना कहेंगे। देखो देखो संख्यात गुणा है, संख्यात गुणा है, आगे नानावर्णीय दंसनावर्णीय वेयणीय अंतराय वेयणाओ कालद उक्कसियाओ चत्तारी वि तुल्लाओ विशेषायाओ। अब कंपेयर किससे कर रहे हैं, 20 से 30 के, तो 20 से 30 संख्यात गुणा कहेंगे क्या, आधे से ज्यादा है तो विशेष अधिक कहेंगे, तो उनसे ज्ञानावर्णीय दर्शना, उनसे यानी नाम गोत्र से ज्ञानावर्णीय दर्शनावर्णीय वेदनीय और अंतराय कर्म की काल से उत्कृष्ट वेदनाएं चारों ही तुल्य होकर विशेष अधिक है, वो 30 कोड़ाकोड़ी सागरोपम है, कारण कि 20 कोड़ाकोड़ी सागरोपमों से 30 कोड़ाकोड़ी सागरोपम द्वितीय भाग से अधिक देखे जाते हैं। 20 का दूसरा भाग 10 है, 20 में 10 मिलाओ तो 30 होते हैं, ये द्वितीय भाग से अधिक है, इसको कहते हैं विशेष अधिक है, पर चारों आपस में समान है, मोहनीयस्य वेयणा कालदो उक्कस्या संकेज्य गुणा। उनसे मोहनीय कर्म की काल की अपेक्षा उत्कृष्ट वेदना संख्यात गुणी है, क्योंकि 30 से ये 70 है तो दो गुणा से ज्यादा है ना, तो गुणित प्रमाण में। कारण कि 30 कोड़ाकोड़ी सागरोपमों से 70 कोड़ाकोड़ी सागरोपमों का एक तृतीय भाग दो अंक गुणकार देखा जाता है। एक तृतीय भाग दो अंक यानी दो पूर्णांक एक तृतीयांश, यानी ऊपर 70 और नीचे 30 कोड़ाकोड़ी, यानी 7/3 हो जाता है। तो 7/3 यानी कितना है, 3 × 2 = 6 और एक तृतीयांश। ये इनके कहने के पते नहीं, एक तृतीय भाग दो अंक, हम कहते हैं दो पूर्णांक एक तृतीयांश, एक ही बात है। इस प्रकार उत्कृष्ट वेदना समाप्त हुई। अब जघन्य उत्कृष्ट में कंपैरिजन करेंगे। जहन्नुक्कस्य पदे 58 कम्माणम वेयणाओ कालदो जहन्याओ तुल्याओ थोड़ाओ, ये तो बताया था पहले। जघन्य उत्कृष्ट पद में काल की अपेक्षा आठों ही कर्मों की जघन्य वेदनाएं परस्पर तुल्य व स्तोक है, कारण कि उनका काल प्रमाण एक समय है। यहाँ फुल स्टॉप दो, दंड। आवो वेयणा कालदो उक्कस्य असंख्य जगुणा, उस एक समय की अपेक्षा आयु की जो उत्कृष्ट है, उनसे आयु कर्म की काल की अपेक्षा उत्कृष्ट वेदना असंख्यात गुणी है। कारण कि एक समय की अपेक्षा पूर्व कोटि के तृतीय भाग से अधिक 33 सागरोपम असंख्यात गुणे पाए जाते। कंपैरिजन कौन सी है, एक समय जो आयु शेष थी 14 के अंतिम समय में उसकी अपेक्षा बाद, वो बंधने वाली आयु वगैरह वो नहीं लेना यहाँ कुछ। नामा गोद वेयणाओ कालदो उक्कस्याओ दोवी तुल्याओ संख्य गुणाओ, उससे काल की अपेक्षा उत्कृष्ट नाम व गोत्र कर्म की वेदनाएं दोनों ही तुल्य व संख्यात गुणी है। वो अभी हमने देखा था ना, संख्यात कैसे होती है, गुणकार क्या है, गुणकार संख्यात समय है, क्योंकि वो संख्यात गुणा हमने किया था 33 से वो 20 कोड़ाकोड़ी संख्यात गुणा है। इसका कारण पहले के ही समान बतलाया है। नानावर्णीय दंशनावर्णीय वेयनीय अंतराय वेयणाओ कालदो उक्कस्याओ चत्तारी भी तुल्याओ विशेषाहियाओ, उनसे ज्ञानावर्णीय दर्शनावर्णीय वेदनीय अंतराय कर्म की काल की अपेक्षा उत्कृष्ट वेदनाएं चारों ही तुल्य व विशेष अधिक है। इसका कारण पहले की ही समान कहना है, बात वही की वही होगी, वहां उत्कृष्ट से उत्कृष्ट और सबका जघन्य एक समय था तो पहले वो बता दिया था। मोहनीय वेणा कालदो उक्कस्या संख्य गुणा, इनसे मोहनीय कर्म की काल की अपेक्षा उत्कृष्ट वेदना संख्यात गुणी है। गुणकार क्या है, गुणकार संख्यात समय है, वो दो पूर्णांक एक तृतीयांश देखा था, वो संख्यात है। इसका कारण पहले के ही समान बतलाया है। इस प्रकार गुणाकार अधिकार गर्भित, गुणकार अधिकार गर्भित अल्प बहुत्व अनुयोग द्वार समाप्त हुआ। कल से हम ये चूली का देखेंगे, आज तो यहीं रुकेंगे। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लो कालो सोवाणी मस्तकनम सदा देत हो। अश्विनी।